48 वर्ष पहले का प्रवचन है, स्वार्थ रहित सेवा की महिमा। प्राय हम लोग ये मानते हैं कि भगवान का भजन करना चाहिए, मन इंद्रियों का संयम रखना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ये तो करना ही चाहिए, परंतु इससे भी एक ऊंची और सरल बात, सिद्धांत की बात आपको बताते हैं। भजन से भी, संयम से भी, स्वाध्याय से भी ऊंची बात बताते हैं, वो है स्वार्थ के त्याग की बात। निष्काम भाव, निष्काम प्रेम भाव से सेवा की जाए तो उसके समान कोई सेवा है ही नहीं। त्याग से भगवान की प्राप्ति होती है, स्वार्थ के त्याग से भगवान की प्राप्ति होती है। भजन साधन तो दूसरों को दिखता है, भगवान का भजन करता है, एकांत में रहता है, माला फेरता है, ध्यान करता है, तो इसका तो ज्ञान होता है लोगों को। पर जो स्वार्थ के त्याग की भावना है, इसका किसी को भी पता भी नहीं चलता। हमारा साधन गुप्त भी रहता है और अपने आप का भी ज्ञान होता रहता है कि हमारे अंदर कितना राग द्वेष स्वार्थ भरा पड़ा है। भजन ध्यान करते हुए अपने राग द्वेष का जल्दी ज्ञान नहीं होता है, और मन में आती है कि हम भजन करते हैं बहुत अच्छी बात है, परंतु स्वार्थ त्याग की तो बात ही कुछ निराली है। चित्त में प्रसन्नता रहती है, चित्त का सुधार ही तो उद्धार है। गीता में कितनी बढ़िया बात कही कि श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागस् त्यागात् शांतिर अनंतरम। भक्ति के मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञान से मेरा ध्यान श्रेष्ठ है, परंतु ध्यान से भी स्वार्थ का त्याग, कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि त्याग से तत्काल शांति मिलती है। शरीर के द्वारा कोई भी क्रिया हुए, सभी स्वार्थ रहित होनी चाहिए। स्वार्थ रहित है तभी क्रियाओं की विशेषता है। हम लोग तो कोई भी काम करते हैं तो यही देखते हैं इससे हमको क्या लाभ होगा। हर एक आदमी यही सोचता है, ये कर तो रहे हमें क्या लाभ। अरे इसी का नाम स्वार्थ है, अपने विषय में, अपने लाभ के विषय में सोचते हैं, यही तो स्वार्थ है। ये तो दुनिया में खूब बिखरा पड़ा है। हम जो सत्संग करने वाले हैं उनमें कुछ विशेषता आनी चाहिए ना। प्रत्येक क्रिया में यह भाव होना चाहिए कि इस काम से दूसरों को क्या लाभ होगा, इस काम से मेरे द्वारा दूसरों की क्या सेवा होगी। हम लोग दूसरों के लिए हैं, दूसरे हमारे लिए नहीं है, ये मर्म की बात है। जैसे कोई लोभी आदमी यह सोचता रहता है कि इस काम से रुपया कैसे मिले, ऐसे हमें भी सोचना चाहिए। सेवा के उपायों के विषय में खोज करनी चाहिए कि इस सेवा से दूसरों को लाभ कैसे मिले। हमने तो दो बात सोच रखी है, एक सेवा एक परम सेवा। अरे बच्चा आवाज नहीं भाई, खेलो तो उधर खेलो बाहर। शरीर के उपकार को सेवा कहते हैं और आत्मा के उद्धार का नाम परम सेवा है। सेवा कहवे शरीर की सेवा करे बिना, और परम सेवा बा हुए तो दूसरा रे कल्याण के हित के लिए चेष्टा करे। आत्मा के उद्धार के लिए विशेष चेष्टा करनी चाहिए, शरीर की भी निष्काम भाव से सेवा करें। कोई अपंग है, अनाथ है, दुखी है, बूढ़ा है, ये सब पूजा के योग्य होते हैं, बड़े चाव से सेवा करनी चाहिए। ये सात्विक त्यागी है सेवा करने वाला, मुक्त संगो अनहमवादी धृत्युत्साह समन्वित है, सिद्ध सिद्धि और निर्विकार है, कर्ता सात्विक उच्यते। जैसे किसी के लड़के का विवाह हो तो उसके तो उत्साह होता है स्वार्थ से, परमार्थ में तो इससे भी बढ़कर उत्साह और आनंद आना चाहिए। अपने घर में यदि किसी लड़के का विवाह हो, अपने ही लड़के का विवाह, तो कितने उत्साह से काम करते हैं, पर यह है स्वार्थ की बात। परमार्थ में इससे भी ज्यादा उत्साह रखना चाहिए, मान बढ़ाई से दूर रहकर कर्म करना चाहिए। और ऐश आराम को तो अपना शत्रु समझ करके त्याग करना चाहिए, ऐश आराम शत्रु है ही। बताया ना कि ध्यान से भी कर्म के फल के त्याग की विशेषता है। अभी एक सज्जन का नाम लिया है, शिवकिशन जी डागा। वर्तमान समय में शिवकिशन जी डागा की सेवा का काम अच्छा है, साधन समझकर कर रखा है, मान बढ़ाई की इच्छा नहीं है, शरीर की भी परवाह नहीं है, ये बात अनुकरणीय है। बद्रीदास जी लोहिया की सेवा का काम भी बहुत सराहनीय था। प्रश्न किया कि कोई उदाहरण देकर समझाओ कि इस प्रकार सेवा करो, तो सेठ जी उत्तर देते हैं, अरे उदाहरण में कुंती से बढ़कर कौन सा उदाहरण मिलेगा। कुंती ने एक चक्रा नगरी में रहकर वहां अपने पुत्र को बकासुर के लिए भेज दिया। ब्राह्मण परिवार का नंबर आया तो उसको बचाया और भीमसेन को भेज दिया। क्यों भेज दी? उसने देखा कि मेरे पांच बेटा है, और उसको विश्वास भी था कि भीमसेन बकासुर से मरने वाला भी नहीं है। पर वो मरे चाहे न मरे उससे मतलब नहीं है, मेरा कर्तव्य यह है कि मैं इस घर में रह रही हूं तो इसकी आफत जो है वो भी हमारी है। उस बकासुर को मार दिया। भीमसेन ने पूछा किसने मारा? मैंने मारा। हाँ हमारा है। इनाम देने लगे, इनाम कुछ नहीं लिया। भीमसेन ने फिर कहा माताजी अब यहां नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि अब हमारी प्रसिद्धि हो जाएगी। वे आगे निकल गए। तो कुंती का कितना त्याग है, अपने पुत्र को बलि वेदी पर चढ़ाने के लिए तैयार हो गई। कितना बढ़िया भाव है, सुख में हम बराबर साथ रहते हैं, दुख में क्यों नहीं रहे। वह कर्तव्य समझकर भेज रही है, कितना त्याग है। ब्राह्मण बलिदान के लिए अपने आप को देने को तैयार है। स्त्री कहती है मेरे प्राणों को देकर पति को बचाना मेरा कर्तव्य है। लड़की कहती है माता पिता के प्राण बचाना मेरा कर्तव्य है। कुंती का त्याग देखो, युधिष्ठिर का देखो, युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हमें क्यों नहीं भेजा, किसी को देखो कितना त्याग है। आज कोई सरकार विज्ञप्ति निकाले कि लड़ाई होने वाली है, हर एक घर से एक एक आदमी को दो, तो कैसा विचार आएगा? लड़के कहेंगे कि पिताजी आप बूढ़े हो गए हो, अब आपको तो मरना ही है, तो आप चले जाओ। पिता कहे गए कि बेटा तुम चार भाई हो, तो तुम्हारे में से कोई एक चला जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? तो बड़ा बेटा कहता है कि मैं तो कमा करके खिलाने वाला हूं, छोटे को भेज दो। छोटा कहेगा कि आपने तो इतनी जिंदगी देखी है, मैंने देखी नहीं, तो आप में से कोई चले जाओ। माने सब छिपना चाहेंगे, त्याग से सब प्रकार से लाभ ही लाभ है। स्वयं यदि त्याग करेगा, यहां से प्रकरण दूसरा है, स्वयं यदि त्याग करेगा तो दूसरों पर प्रभाव पड़ेगा। हर एक काम में त्याग ही त्याग दिखना चाहिए। जो त्याग का व्यवहार करता है वह तो एक प्रकार से सबको त्याग की शिक्षा देता है। क्रिया से शिक्षा देना वचन की अपेक्षा उत्तम है। कहने से उतना असर नहीं पड़ता जितना करने से पड़ता है। मैं यदि यह कहने लगूं कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए तो मेरा असर कम पड़ेगा, क्योंकि मेरे द्वारा माता पिता की कोई विशेष सेवा नहीं हुई तो लोगों को भी कम ही लाभ होगा। मैं पालन करूंगा तो उसी का ही असर होगा। मैं कहूंगा कि नित्य निरंतर भगवान का ध्यान करो, किंतु यदि मैं स्वयं भजन नहीं करता तो क्या असर पड़ेगा? मैं यदि भजन ध्यान करूं तो लोग कहेंगे कि देखो ये भजन करता है, अपने को भी भजन करना चाहिए। नहीं करूंगा तो कहेंगे देखो बोलते तो है इनसे ज्यादा, तो हम करते ही है, वो और ज्यादा अपने भजन करने में ढिलाई लाएंगे। जिस विषय में मैं कहता हूं उसका पालन करूं तो मेरा कहने का अधिकार है। यदि मेरे में स्वार्थ की बात है तो किसी भी प्रकार असर नहीं पड़ेगा। भगवान से प्रेम करने वाला ही प्रेम की शिक्षा देगा। वेश्या भगवान के प्रेम की क्या शिक्षा दे सकती है? वेश्या का क्या असर होगा? जो आदमी जो व्याख्यान देता है उसे उसमें निपुण होना चाहिए, अनुष्ठान स्वयं करना चाहिए, तभी कहने का अधिकारी होता है। ये बहुत अच्छा उदाहरण आपके सामने मैंने रखा है। केवल स्वार्थ त्याग के भाव से आत्मा का कल्याण हो जाता है। जब कभी भी काम पड़े त्याग करने में आगे आना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। कुंती एक उच्च कोटि की स्त्री थी। धृतराष्ट्र और गांधारी जब तपस्या के लिए वन में गए तो कुंती ने कहा, ये मेरे जेठ जेठानी है, मेरे लिए सास ससुर के समान है, मैं तो इनकी सेवा के लिए जाऊंगी। धृतराष्ट्र तो अंधे हैं, गांधारी ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है, इसलिए सेवा की आवश्यकता है, मैं सेवा करूंगी। कितनी विचित्र बात है, ध्यान देना चाहिए। कुंती के साथ इन लोगों ने कैसा व्यवहार किया? इसी धृतराष्ट्र के पुत्रों ने भीमसेन को विष खिला करके गंगा जी में डाल दिया। कुंती को यह मालूम था और विदुर जी ने भी कह दिया कि देखो कुंती, दुर्योधन का काम है, तुम्हारे पुत्र को उसने जहर देकर गंगा जी में डाल दिया। कुंती ने कुछ नहीं कहा, गम खा लिया। चुप रहने में बहुत लाभ होता है। हमारे साथ कोई अन्याय करे उसको कहो भी मत, चुप रहो। भीमसेन जब वापिस आए तो उसने कुंती माँ से कहा कि माँ, मालूम होता है खीर में जहर मिला करके दुर्योधन ने गंगा में बहा दिया। कुंती ने कहा, बेटा ये बात किसी से मत कहो। जब मैं नीचे पताल में ले जाया गया तो एक नागकन्या का बगीचा मिला, बड़ा सुंदर बगीचा था। मैं तो उस जहर से एक तरह से मरने वाला था। नागकन्या ने प्रतिज्ञा की कि मैं जिसको देखूंगी उसी के साथ मेरा विवाह होगा। तब उसके पिता ने नागों को बुलाया और मेरा सारा जहर पी लिया और मुझे यहां सही सलामत भेज दिया। तो कुंती ने बुराई करने वालों के साथ भी भलाई की। इसी दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र के लिए राज्य सुख का त्याग किया। राजमाता थी पर धृतराष्ट्र की सेवा में गई। जब कुंती सेवा के लिए धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन में जा रही थी तब द्रौपदी और सत्यभामा ने कहा कि मां, तुम यहीं रहो, हम में से किसी को भेज दो, आप बूढ़े हो, आप मत जाओ। किंतु कुंती ने कहा कि सेवा का काम मैं करूंगी। द्रौपदी, तुम्हारे पति यहां हैं। सत्यभामा से कहा कि सत्यभामा, तुम्हारे पति कृष्ण है, उनकी सेवा करो। द्रौपदी से कहा कि तुम्हारे पांच पति, उनकी सेवा करो। इनकी सेवा तो मैं ही करूंगी क्योंकि मेरे कोई पति इस समय है ही नहीं। आजीवन सेवा करके उन्हीं के साथ अपने प्राण गंवाए कुंती ने, धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ। कुंती ने कैसा व्यवहार किया, विचार करना चाहिए। हम तो ये कुंती का चरित्र देखते हैं तो इससे ऊंचा कोई हमको उदाहरण मिलता नहीं है। कोई भी हमारे साथ बुराई करे तो उसका जवाब बुराई से कभी नहीं देना चाहिए। इससे बुराई संसार में बढ़ती है। बुराई का उत्तर भलाई से देना चाहिए। कुंती ने अपने वाणी से भी कभी गांधारी को, धृतराष्ट्र को कुछ भी नहीं कहा। कुंती की तरफ से किसी को तकलीफ नहीं हुई। तो कुंती की तरह अपने को भी जबान पर लगाम रखनी चाहिए। परिवारों में देखते हैं कि बहुत ज्यादा लड़ाई का कारण तो अपनी जबान ही तो है। जिसमें माताएं बहनें बोलने से पहले बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हैं, इसलिए परिवार में कलह हो जाता है। अपनी वाणी को बहुत कंट्रोल में रखो। व्यवहार के अंदर जहां भी स्वार्थ का भाव अपने अंदर आए तो अपने कल्याण में बाधा समझकर त्याग करो। अरे ये स्वार्थ का भाव क्यों आ गया? युधिष्ठिर जी महाराज ने कैसा बर्ताव किया? युधिष्ठिर जी महाराज जंगल में, वन में थे। उनको मारने के लिए दुर्योधन सैनिकों के साथ वहां आया। लेकिन जब दुर्योधन स्वयं ही चित्ररथ गंधर्व के द्वारा पकड़ा गया और उसको मारने की नौबत आई तो युधिष्ठिर जी ने अपने भाइयों को भेजकर छुड़ाया और कहा कि दुर्योधन अपना ही भाई है, हम घर में लड़ते हैं तो आपस में लड़ेंगे, परंतु गंधर्वों के द्वारा हम दुर्योधन को मारने नहीं देंगे, चाहे वो हमको भले ही मार दे। ऐसा व्यवहार कितना समाज को और मनुष्य को, मनुष्यता को सुरक्षित रखने वाला होता है। युधिष्ठिर महाराज के धर्म का बड़ा भारी प्रभाव पड़ा। बुराई करने वाले के साथ भलाई करना एक नंबर की बात है, यही आदमी के स्वार्थ त्याग की परीक्षा होती है। इस प्रकार स्वरूप से तथा हृदय से स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। फल का त्याग का भी त्याग करो, निष्काम भाव से आप त्याग में लग जाओगे, परमात्मा की प्राप्ति आपको सहज हो जाएगी। कुंती का प्रसंग हमने संक्षेप में बताया है, हमको निष्काम भाव ही बताना था, वो बता दिया। फल की इच्छा तथा अहमवादी नहीं होना चाहिए, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेवा करो पर फल मत चाहो, यही निष्काम भाव है। और आपको मर्म की बात बताते हैं, जो हमको दुख दे उसके साथ उसको कैसे सुख मिले, उसका विशेष उपकार करना चाहिए कि इस आदमी के इस व्यवहार से हमको हमारा ज्ञान हो रहा है, ये हमारे लिए सहायक है, इसलिए उसका विशेष उपकार करो, इसका बड़ा असर पड़ेगा। शत्रु भी साधु हो जाएगा। अरे किसी के भाव बदल देना ये कोई मामूली बात है? बहुत वर्षों से जिसके अंदर द्वेष भरा पड़ा है उसका द्वेष भाव अंदर से निकल जाए, ये तो वैसा ही है जैसे किसी के शरीर में वर्षों से बीमारी है और फिर वो बीमारी खत्म हो जाए, तो शरीर की बीमारी खत्म होने पर एक सुख मिलता है, भाव की खराबी निकल जाए उससे जो आनंद मिलता है उसको कौन बता सकता है। इससे आत्मा पवित्र होती है, पवित्र बनाने से बढ़कर और क्या होगा, इसी को ही परम सेवा बोलते हैं। शरीर की सेवा तो सेवा है, आत्मा का कल्याण होना परम सेवा है। शरीर की सेवा से उद्धार हो जाए तो फिर निष्काम भाव से परम सेवा होने में शंका ही क्या है। रुपए का लोभी जिस प्रकार रुपया मिले बस ये हरदम उसकी धुन रहती है, इसी प्रकार सेवा कैसे मिले ये भाव रहना चाहिए। ये बहुत उच्च कोटि का भाव है। सेवा की प्रधानता के कारण से वेद व्यास जी ने शूद्रों को धन्य बताया है, हे शूद्रों तुम धन्य हो, हे शूद्रों तुम धन्य हो। सेवा मिल जाए तो अपना अहो भाग्य समझना चाहिए, किसी पर एहसान थोड़ा ही, हमने तुम्हारी सेवा की, हमारा तुम्हारे पर एहसान तो बराबर हो जाएगा। उसको लाद दिया, इसे तो सेवा नहीं करते तो कोई बात नहीं, बराबर कर दिया। सेवा मिल जाए तो अपना अहो भाग्य समझो। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। एक और बात आपको बताएं कि किसी भी व्यक्ति की सेवा करो, सास की करो, ससुर की करो, पति की करो, पुत्र की करो, भाई की करो, किसी की भी सेवा करो। अंदर ये भाव रखना चाहिए कि इस रूप में भगवान आकर मुझसे सेवा लेकर, सेवा रूप पूजा करवाकर मेरा कल्याण कर रहे हैं। और कभी सास कठोर वाणी बोल दे तो क्या ये मेरी विशेष परीक्षा हो रही है, भगवान इनके द्वारा कठोर वाणी बोला करके मेरे हृदय के भाव का ज्ञान कराना चाहते हैं, इसलिए मुझे बहुत धैर्य से काम लेना होगा। ये उच्च कोटि की सेवा है। वृक्ष में पानी डालो तो ये समझ करके पानी डालो कि ये भगवान ही इस वृक्ष के रूप में है। पानी डालते डालते भगवान का ध्यान होना चाहिए। हमने तो प्रेस में भी कह रखा है कि जो आप कागज छापते हो, छापते छापते भगवान का ध्यान लग जाए और हमारी मशीन यूं ही चले तो वो घाटा हमको बर्दाश्त है। सब कुछ भगवान का ही रूप समझकर सेवा करे तो सीधी भगवान के पास सेवा पहुंचती है। ऐसा नहीं कि सास ससुर की, पति की सेवा करी अब भगवान के पास बाद में जाएगी, ऐसा नहीं। इनको भगवान मानकर करोगे तो सीधी भगवान के पास सेवा पहुंचती है और आपके मन में उत्साह होता है। सबको भगवान मानकर मन से हाथ जोड़ना चाहिए। हो सके तो अपने व्यवहार से सबको सुख पहुंचाकर कृतकृत्य होना चाहिए। इन्होंने हमारी सेवा ले ली, हमारे पर बड़ा एहसान किया, हमने सेवा की, एहसान किया, ऐसा नहीं इन्होंने हमसे सेवा ले ली, बड़ा एहसान किया है। भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान हमको नीचे से नीचा बनाओ। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। जो सबसे नीचा होकर रहता है वही अंत में ऊंचा होता है। ये अटल सिद्धांत है, केवल कहने की बात नहीं है। और जो अपने को ऊंचा मानता है, बढ़कर मानता है, उसका तो पतन ही होता है। अपने को तो चरणों की रज मानना चाहिए, हम सबके चरणों की रज है, वह ऊंचा उठ जाता है। सबके चरणों की धूली होकर रहो, ऐसा करने वाला तत्काल भगवान की प्राप्ति कर लेता है। ये बात हमने बहुत सोच समझ करके गहराई से कही है। राम।